आत्मभावना लेक्चर नंबर 15। ओम नमः सिद्धेव्य, ओम नमः सिद्धेव्य, ओम नमः सिद्धेव्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सुखाय। येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वे नैव चापरम्, अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। यह आत्मभावना नामक शास्त्र है जो समाधि तंत्र ग्रंथ जो पूज्यपाद स्वामी का है उस पर कांजी स्वामी के प्रवचन है। उसमें भी हम सातवां जो श्लोक है उसको पढ़कर उस संबंधी यहाँ प्रवचन की बात चल रही थी। यहाँ तो देखते हैं कि बहिरात्मा का जो उसको और कैसे पहचानना उसकी बात हो रही है यहाँ पर, कि उसको देह में आत्मबुद्धि क्यों हो रही है। जड़ को ही उसने मैं हूँ ऐसा मान लिया है। यानी उसको शरीर से भिन्न जो अतीन्द्रिय आत्मा है वो क्या कर रहा है, तो इंद्रियों के द्वारा ही जानता है आत्मा को। यानी इंद्रियों से हटकर उसने अपने आत्मा को जानने की कभी कोशिश नहीं की है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान तो अंतर्मुख ज्ञान से ही होता है, इंद्रियों से नहीं होता है। दूसरी भूल है कि इंद्रियों को ही वो ज्ञान का साधन मानता है। यानी शरीर से ही ज्ञान होता है, इंद्रियों से ही ज्ञान होता है, इसी उसकी भ्रमणा है। अब यहाँ हम आए हैं 34 पृष्ठ पर, नीचे का पैराग्राफ पढ़ेंगे हम। अरे पोताना चैतन्य तत्व ने चूकी ने देहादिमा ज आत्मबुद्धि थी, अज्ञानी जीव क्षणे क्षणे भयंकर भाव मरण मा मरी रहे छे। उसको तो ऐसा लगता है शरीर चल रहा है ना तब तक मैं जिंदा हूँ, मैं जी रहा हूँ। तो कहते ये तो आत्मबुद्धि किसमें है उसकी, तो शरीर में। अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं जाना है क्योंकि चैतन्य भाव प्राण से तो अनादि अनंत जीता ही रहता है, क्योंकि उसका नाम ही जीव है जो अनादि से जीता रहा है, अभी वर्तमान में जी रहा है, भविष्य में अनंत काल तक जीता रहेगा। जीवत्व शक्ति में वो सभी गुण उसके गर्भित हो गए। तो कहते ये जीवत्व यानी जीवपना ही उसका लक्षण है, परंतु उसने अपने चैतन्य तत्व को पहचाना नहीं है, देह को ही मैं हूँ ऐसा मानता है, और उसके कारण हर समय क्षणे क्षणे भयंकर भाव मरण मरे गए, क्योंकि अपने अस्तित्व का ही इनकार कर दिया इसने, अपना ही घात कर दिया उसने। बाह्य विषयों माथी सुख लेवा मागे छे पण तेमा तो अंतर नु वास्तविक सुख भुलाई जाए छे। यानी उसकी भ्रमणा है कि बाह्य विषयों से मुझे सुख मिलेगा। बाह्य विषय जो है वो तो ज्ञान के ज्ञेय मात्र है, परंतु उनको जानते हुए मानता है कि मैं इनका भोग कर रहा हूँ और उसी में उसके सुख बुद्धि हो रही है, और उसमें सुख मान लिया तो सच्चा सुख उसके वो तो और दूर हट जाता है। इंद्रिय ज्ञान वड़े इंद्रिय विषयों ने जाने छे ने तेमाथी सुख लेवा मांगे छे। हाँ देखो, भाव मरण का एग्जैक्ट अर्थ क्या लेना है, तो उसने अपने स्वयं के अस्तित्व का इनकार कर दिया, जाना ही नहीं, यही उसका मरण हो रहा है हर समय। स्वहिंसा हो रही है, अपनी दया ही नहीं उसने अनादि से पाली। तो देख हर समय वो तो क्या करे, तो देह को मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मान रहा है, तो सच्चे मैं का मरण हो रहा है हर समय, ये उसका भाव मरण। यानी उसका सच्चा जीवन अभी शुरू ही नहीं हुआ, क्योंकि जो स्वयं है उस रूप उसने अपने को माना ही नहीं है। ये तो हमने कितने लोग ऐसे मिलते हैं, आत्मा कहाँ है दिखाओ, हम मानेंगे ही नहीं। अरे जो स्वयं आत्मा ही कह रहा है कि हम मानेंगे ही नहीं उसको, यही भाव मरण है और क्या है। तो कहते इंद्रिय ज्ञान वड़े इंद्रिय विषयों ने जाने छे ने तेमाथी सुख लेवा मांगे छे, पण तेमा तो पोताना चैतन्य प्राण नो घात थाय छे। देखो यहाँ आ गई उत्तर आ गया, अपने चैतन्य प्राण का घात हो रहा है। आत्मा नो आनंद हणाय छे ने दुख थाय छे तेनो विचार पण अज्ञानी ने नथी। देखो चैतन्य प्राण से तो ये रहित कभी होगा ही नहीं, परंतु उसका स्वीकार नहीं है तो उसका घात हो रहा है इसके, क्योंकि उसका हर समय की जो चैतन्य की जो परिणति ज्ञान की परिणति है तो पर को जानने में रुक गई है, और उसी से ज्ञान भी उसी से हो रहा है, सुख भी उसी से हो रहा है। मान रहा इंद्रियों से होता है और पर पदार्थों से होता है ज्ञान, यानी आत्मा का तो उसके तो पता नहीं है तो उसका स्वीकार नहीं है। ज्ञान तो मेरा लक्षण है, मेरे से होता है, उसने स्वीकार नहीं किया, अपना घात कर दिया। और विषयों को इंद्रियों के विषयों को जानते हुए उसमें से सुख मिल रहा है या और उसकी दूसरी मिथ्या भ्रमण चाहते, यानी उस काल्पनिक सुख के पीछे वो सच्चा जो आनंद है आत्मा का उसका पता ही नहीं है और वो नहीं प्रकट हो रहा है। तो कहते हनाई चे उसका विचार भी अज्ञानी नहीं, वो तो हो इतना सब कुछ हो रहा है और उसका विचार तक उसको नहीं, उसको पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ और सच्चा सुख कहाँ से मिलेगा, उसका विचार भी नहीं उसके। चैतन्य ना भान वगर व्रतादि पण यथार्थ न हो। कोई कहते नहीं हम बरोबर यथार्थ करते जैसे आगम में लिखे बिल्कुल वैसे व्रतों का आचरण करते हैं। तो कहते कि चैतन्य ना भान वगर, यह आत्मा को जाना ही नहीं माना ही नहीं है और बस कुछ व्रत अंगीकार कर दिया, इस तरह से उपास आदि किया, इस तरह से हमने व्रत किए, तो कहते हैं जो प्रोषद किया हमने सामायिक किए, तो वो कुछ क्रियाएं कर दी परंतु क्रिया के पीछे जो मूल बात थी वही गायब हो गई। तो कहते वो व्रतादि भी यथार्थ नहीं होते। चैतन्य सन्मुख वृत्ति वाले अवगर, वृत्ति ने अपने जो भाव है जो परिणति प्रकट हो रही है, चारित्र गुण को लेना, वृत्ति का शब्द चारित्र गुण में लगा लेना, उसके पर्याय जैसे कैसे हो रहा है शुभ या अशुभ वृत्ति उठती है ना, तब ये क्या होना चाहिए चैतन्य सन्मुख वृत्ति वाले वगैरह, आत्म सन्मुख हो उसका उपयोग, ने चारित्र का उपयोग जो है अपने में लीन रहेगा। तो चैतन्य सन्मुख वृत्ति वाले वगैरह बाह्य विषयों ना त्याग रूप व्रत पण हो ही नहीं, क्योंकि वो सच्चा त्यागी कहाँ है, बाह्य वस्तु तो अपने से बाह्य ही है, वो अपने से छूटी ही है, उसका त्याग करना जो कह रहे हैं तो उसका त्याग सच्चा कब कहलाएगा, तो उसको उससे हटकर हम अपने सन्मुख हो जाएंगे तो हमने उसका त्याग किया। हम किस में लगे रहे, उन्हीं को जानने में लगे रहे, तो उसका त्याग कहाँ हो गया, हमने अपने पास रखी थी वस्तु हमने उसको दूर कर दी, किसी को दे दी कहो या तो कुछ, उसका त्याग कर दिया, तो वो सच्चा त्याग नहीं, उसको दे दिया हमने इतना पैसा और रात दिन उसी को गिन रहे कि हमने इतना दिया हमने इतना दिया, उसका त्याग कहाँ हुआ है। उस वस्तु के प्रति अभी लगाव अभी बना है। तो चैतन्य ना भान वगैरह व्रतादि पण यथार्थ न होए, चैतन्य सन्मुख वृत्ति वाले वगर बाह्य विषयों ना त्याग रूप व्रत पण होए नहीं। ये हो गया अभी अपना चैतन्य। हाँ नीचे से दूसरी लाइन अभी पढ़ेंगे। चैतन्य स्वभावनी सन्मुख था वगर अज्ञानी व्यवहारे व्रतादि पाले तो पण, ये व्यवहार ये कहने के लिए व्यवहार है, उसके तो व्यवहार भी नहीं है क्योंकि निश्चय के बिना व्यवहार भी नहीं होता है, परंतु जिसको कहेंगे वो तो व्रत आदि की जो कुछ आचरण है वो पाल रहा है। तो कहते परंतु वो आत्म सन्मुखता है ही नहीं, उसको आत्मा को जाना नहीं है, और अज्ञानी व्यवहार है व्रत आदि पाले तो पण, यानी उसका व्रत आदि पालना भी व्यवहार से कहे वो भी उसमें भी निश्चय नहीं लगेगा। તે ઇન્દ્રિય દ્વારા બાહ્ય વિષયોમાં જ વર્તે છે, કેમ કે ઇન્દ્રિયોથી જુદા આત્માનું સ્વસંવેદન જ્ઞાન તો તેને છે જ નહીં. આપ કહેંગે ને ઉસને તો ઇન્દ્રિયો કે વિષય ક્યો કોઈ રોક કા ખાય ના, પણ જો કુછ જાનને મેં આ રહા હૈ વો ઇન્દ્રિયો કે દ્વારા બાહ્ય કો જાન રહા હૈ, ભલે શરીર કી ક્રિયા કરને મેં ઉસકા ઉપયોગ લગા હૈ તો ભી ઇન્દ્રિયો કા વિષય હો ગયા. પરંતુ ઉસકો સ્વ માનકર ઓર ઉસે મેં ઓર લીનતા કર કે મેરા આચરણ બિલકુલ સહી હોના ચાહીએ, મેં એસા દેખ કે ચલુંગા, મેં ઇસ તરહ સે કરુંગા, મેં યે જો બાકી બાતે હૈ. હા, કરતા બનતા હૈ શરીર કી ક્રિયા કા ભી और राग का भी करता होकर करते रहता, क्योंकि लिखा ना इंद्रियों थी जुदा आत्मानु स्वसंवेदन ज्ञान तो तेने छेज नहीं, तो मात्र बाह्य में ही उसका प्रवर्तन चल रहा. आत्मा देहादि थी जुदो छे भले शास्त्रादिक थी कहे, क्योंकि अभी सीख गए ना देह आत्मा भिन्न है, पर इंद्रियों थी अने राग थी ज्ञान माने તો તે જીવ દેહાદીને જ આત્મા માને છે, ક્યોકિ જ્ઞાન તો આત્મા કા ગુણ હૈ ઓર યે ઇન્દ્રિયો સે હોતા હૈ માનતા હૈ, રાગ સે વો હોના માનતા હૈ, તો ફિર દેહાદી કો હી આત્મા માન રહા હૈ. દેહ થી જુદો આત્મા તે માનતો નથી, દેહ થી ભિન્ન આનંદ સ્વરૂપ આત્મા ઇન્દ્રિયો દ્વારા કે રાગ દ્વારા જનાતો નથી. देखो आत्मा ज्ञान आनंदमय है, अनंत गुणों का पिंड है, हम उसको मुख्यता से ज्ञान आनंद की बात करते हैं यहाँ पर. तो वो तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वो अपने ज्ञान से अपने को जानता है. तो इंद्रियों द्वारा तो बाह्य में जानने में इंद्रियां निमित्त मात्र है, तो जानता तो ज्ञान ही है, जानने वाला तो आत्मा स्वयं है, परंतु वहां पराधीनता है, कमजोरी है, इंद्रियों का निमित्त बनता है. अब राग द्वारा जाना तो नहीं, राग के कारण कोई व्रतादि किए इसलिए आत्मा जानने में आए, तो कहते ऐसा भी नहीं, ना ही इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है आत्मा, ना ही राग के द्वारा. वो अलिंग ग्रहण के बोल में कितना कितना दिया है ना, तो कैसे जाना जाता है, क्योंकि जो देह से भिन्न है वो देह के ही जो चिन्ह है इंद्रिया आदि उसके द्वारा उसको कैसे जान सकते, एक बात. दूसरे राग, राग भी क्षणिक है, विभाव भाव है, उसको तो जड़ भी कह दिया है किसी अपेक्षावश, उससे भी आत्मा जानने में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो विपरीत भाव है. विपरीत भाव से स्वभाव भाव कैसे जानने में आएगा, ज्ञान आनंद आत्मा का स्वभाव है और राग आत्मा का विभाव है, क्षणिक है, छोड़ने लायक है. उस भाव से ये स्वभाव भाव जानने की कोई कोशिश करेगा तो भी वो पॉसिबल ही नहीं, शक्य ही नहीं. तो कैसे आत्मा जाना जा सकता है, तो अंतर्मुख थईने अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा आत्मा जणाय छे. आत्मा अतीन्द्रिय पदार्थ है और वो अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा ही जाने में आता है. आवा आत्मा ने जे जाने तेने ज चैतन्य ना आश्रय वीतरागी समाधि रहे छे. यह अंतर एकाग्रता जो है आत्मा में वही तो समाधि है, उसी को वीतरागी समाधि कहेंगे. देहादीनी मूर्छा छोड़ीने, मूर्छा है ने वो क्या बेहोश हो गया क्या, तो देह में आत्मबुद्धि यही उसकी देहादि की मूर्छा है. कि देहादीनी मूर्छा छोड़ीने चैतन्य मां सावधान थयो तेज समाधि है. इसको वो तो इसमें भी कुंकुंदाचार्य ने अष्टपहर में कहा है ना, निश्चय में जो जो व्यवहार सोता है वही निश्चय में जागता है, जो निश्चय में सोता है वो व्यवहार में जागता है, ऐसा. तो फिर यहाँ चैतन्य में जो सावधान थयो तेने समाधि छे. अब यहाँ नीचे कैप्शन दिया है हमारे पुस्तकों में, देखो, मारो चैतन्य विलास. विलास समझते हैं उसका वैभव है, उसकी शोभा है, उसका आनंदमय चैतन्य विलास थी भरपूर. ये चैतन्य कैसे ज्ञान और आनंद में अपना स्वभाव है, ज्ञान और दर्शन दोनों मिलकर चैतन्य ले लिया, और वो चैतन्य कैसा है तो आनंदमय है, यानी आनंदमय चैतन्य, यही मेरी शोभा, यही मेरा विलास है, यही मेरा वैभव, इससे भरपूर मारा आत्मानी सन्मुख थई ने, यानी इससे भरपूर लबालब भरा हुआ है, ऐसा मैं स्वयं हूँ और मैं अपने ही सन्मुख होकर तेनेज भावतो हूँ, चार गति ना भवों ने भावतो नथी, भवों ने के भावों ने चार गति ना भवों ने भावतो नथी, तेना थी हूँ विमुख छूं, जुदो छूं, एटले ते मनुष्यादि कोई गति नो हूँ करता नथी, मारा मा ते गति नथी ने ते गति मा हूँ नथी, हूँ मारा चैतन्य विलास मा ज छूं, आवा आवो पोतानो अनुभव कर्यो तेनो वारंवार अभ्यास ते मोक्षनो मार्ग छे। एक बार अनुभव होने के बाद बारंबार उसी का अभ्यास, उसी में लीनता, वही तो मोक्ष मार्ग है, तभी तो वो जीव आगे बढ़ेगा। अभी हम समाधि तंत्र ग्रंथ में से आगे के श्लोक देखेंगे, नंबर 8 और 9 एक साथ है मेरे ख्याल से। पृष्ठ संख्या है उसमें 20 समाधि तंत्र। अब यहाँ लिखते हैं श्लोक के ऊपर, तच्च प्रतिपद्यमानो मनुष्यादि चतुर्गति संबंधी शरीर अभेदेन प्रतिपद्यते तत्र, यानी ये बात यहाँ ऊपर लिखा है, लिखी है कि तेनु प्रतिपादन करी, तेनु ने अभी तो बहिरात्मा की बात चल रही थी, उसका प्रतिपादन, उसका कथन, प्रतिपादन यानी कथन, उसका कथन करके मनुष्यादि चतुर्गति संबंधी शरीर भेद थी जीव भेद नु तेमा प्रतिपादन करे छे। शरीरा भेदे ना क्यों कहा, शरीर भेदे ना चाहिए ना। पेज नंबर है 20 आपकी पुस्तक में, कौन सा पेज है, समाधि तंत्र रूमा का पेज नंबर 20 है, 23 है, पुरानी पेज, अभी अलग अलग 8 और 9 नंबर का श्लोक निकालो, उसके ऊपर रूमा क्या लिखा है हेडिंग, हाँ संस्कृत में, तच्च प्रतिपद्यमानो मनुष्यादि
चतुर्गति संबंधी शरीराभेदेन,
शरीराभेदेन है ना,
भेदेन प्रतिपद्यते
तत्र,
तत्र
ठीक है। शरीरा भेदे न क्यों कहा ऐसे, हम श्लोक पढ़ेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। पहले पढ़ेंगे तो फिर नीचे उसका जो रेफरेंस श्लोक बताया है ज्ञानार्णव का, उसको भी बाद में पढ़ेंगे। नरदेहस्थम आत्मानं विद्वान मन्यते नरम तीर्यंचं तीर्यगंगस्थं सुरांगस्थं सुरं तथा नारकं नारकांगस्थं न स्वयं तत्वतस्तथा अनंतानंदधीशक्ति स्वसंवेद्योचलस्थित। देखो यहाँ क्या, जैसे ऐसा आसान है, वो क्या कह रहे, स्थिति लिखा है, स्थित लिखा है हमारे, स्व संवेदो चलस, स्थित स्थिति ही चाहिए क्या, उसमें क्या है, अन्वयार्थ में स्थिति लिया है शब्द उन्होंने, अचल स्थिति ही, हाँ वो स्थिति ही चाहिए, आपके उसमें स्थिति ही है ना, अच्छा तो हमारे में वो गलत होगा। हाँ देखो आत्मभावने में भी अचल स्थिति ही लिखा है, स्थित का स्थिति ही करो, बोले वो पुस्तक है मंदिर की पर हम स्थिति ही करेंगे। हाँ हाँ नीचे देखो उसका रेफरेंस देखते हैं, ज्ञानार्णव में शुभचंद्राचार्य क्या लिखते हैं, असुरं त्रिदश पर्यायैस्तथा नरं तिर्यञ्च च तदङ्गे स्वं नारकाङ्गे च नारकं व्यत्यविद्या परिश्रान्तो मूढस्तन्न पुनस्तथा किं त्वमूर्तं स्वसंवेद्य तद्रूपं परिकीर्तितम्। वही बात है जो तीर्यंच अंगों में वो तीर्यंच है, नारकियों के अंगों में वो हाँ नारकी है। अभी हम इसे उसका अर्थ पढ़ेंगे। अभी जहाँ श्लोक 8-9 का अन्वयार्थ लिखा होगा वो देखना रुमा, क्योंकि जहाँ श्लोक लिखे उसके नीचे तो 7वें श्लोक की विशेष बातें उन्होंने बताई। अन्वयार्थ जहाँ लिखा होगा 7वें 8वें 9वें का वो हमको पढ़ना है। अविद्वान पहले शब्द में आए ना, पहले लाइन में नरदेहस्थम आत्मानम अविद्वान मन्यते नरम। अविद्वान ने अज्ञानी उसको नर मानता है, मनुष्य मानता है। अविद्वान ने मूढ़ बहिरात्मा नरदेहस्थम मनुष्य मनुष्य देह में रहेला आत्मा ने नरम मनुष्य क्या करता है, माने छे मनुष्य मानता है। तीर्यंगस्थम ये तीर्यंच के अंग में रहने वाला यानी शरीर में रहने वाला तीर्यंच ना शरीर में रहेला आत्मा ने तीर्यंच। सुरांगस्थम सुर ने देव, देव के अंग यानी देव का शरीर, देव ना शरीर में रहेला आत्मा ने सूर्य ने देव। सुरांगस्थम सुरम तथा अने अभी ये दूसरे 9वें श्लोक की बात करेंगे। नारकांगस्थम नारकी ना शरीर में रहेला आत्मा ने नारकम मन्यते नारकी माने छे, ये माने छे शब्द सबके लिए लगा लेना। तत्वत अने खरेखर वास्तविक रीते स्वयं स्वयं आत्मा तथा न तेवो नथी, न स्वयं तत्वतः तथा स्वयं खरेखर यानी सच देखा जाए तो स्वयं वैसा नहीं है, तो स्वयं आत्मा तेवो नथी अर्थात ते मनुष्य तीर्यंच देव आने नारकी रूप नथी, परंतु वास्तविक रीते आ आत्मा अभी लास्ट लाइन में क्या लिखा है अनंतानंत धी शक्ति ही। धी का अर्थ समझते हैं, ज्ञान ज्ञान हाँ। तो कहते वास्तविक रीते आ आत्मा अनंतानंत ज्ञान ने अनंतानंत शक्ति रूप छे। धी भी और लिया और शक्ति भी ली, उसकी शक्ति भी अनंतानंत है। अभी शक्ति में उन्होंने यहाँ वीर्य रूप डाल दिया है हाँ, क्योंकि वो दरेक पर्याय की जो रचना होती है वो तो वीर्य गुण का कार्य है, इसलिए वीर्य को भी लिया। या अनंत अनंत शक्ति में अनंत अनंत गुण भी ले सकते हम, परंतु यहाँ तो अनंत अनंत ज्ञान ने उसकी हर एक गुण में कितनी शक्ति उसकी बात कर, जिसको हम कहें अनंत ज्ञान उत्पन्न हुआ उसकी बात है। मात्र अनंत ने का अनंतानंत कह दिया। तो इसे वास्तविक रीते आत्मा अनंतानंत ज्ञान ने अनंतानंत शक्ति रूप छे। स्वसंवेद्य स्वानुभव गम्य छे, यानी इतना सब है तो खाली भगवान ने कहा इसलिए है हमें कैसा मालूम पड़ेगा, तो कहते स्वसंवेद्य है स्वयं उसका अनुभव कर सकता है। स्वानुभव गम्य है पोताना अनुभव गोचर छे अने अचल स्थिति ही पोताना स्वरूप मां सदा निश्चल स्थिर रहेवा वाळू छे। कौन ये स्वयं आत्मा, आत्मा की बात है ना, आत्मा कैसा है अनंतानंत ज्ञान और शक्ति से युक्त है स्वानुगम गम्य है और आत्मा अपने स्वरूप में हमेशा ही निश्चल और स्थिर है, अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होगा। भले अज्ञानी उसको जाने या नहीं जाने उसका स्वभाव उसकी शक्ति तो ऐसी ही ऐसी है। अब टीका नरनो देहते नर देह तेमा रहे छे थे नर देहस्थ स्थ न गृहस्थ રહે છે, ચાહીએ રમે છે, રહે છે. ઉપર લખે ને તત્ર તિષ્ઠતિ ઇતિ નરદેહસ્થ તમ આત્માનમ નરમ મન્યતે. તે એને નરના દેહમાં રહેનાર આત્માને નર માને છે. કોણ તે? એને એસા કોણ માન રહા હૈ? વહાં અવિદ્વાન શબ્દ આયા થા, અજ્ઞાની. તો કોણ તે આવું માને છે? તો અવિદ્વાન, બહિરાત્મા એવું માને છે. તિર્યંચને આત્મા માને છે. કેવા તિર્યંચને? તો તિર્યંચોના શરીરમાં રહેનારને તિર્યંચોનું શરીર, તે તિર્યંચ શરીર તેમાં રહે છે, તે તિર્યંગસ્થ. અંગ એને શરીર, તિર્યંચ તિર્યક એની તિર્યંચ અંગ મેં જો રહેતા હૈ વો ઉસમે સ્થ લગાયા, તિર્યંગસ્થ તેને આત્મા માને છે. એને ઉસ દેહ કો હી આત્મા માનતા હૈ. યહ તિર્યંચ હૈ, યહ મનુષ્ય હૈ, યહ દેવ હૈ. આત્મા હિ વો મનુષ્ય હૈ, આત્મા કો હી તિર્યંચ કહે રહા હૈ, આત્મા કો હી દેવ કહે રહા હૈ. પરંતુ ઉસમે આત્મા જુદા હૈ, વો દેહ જુદા હૈ. ઉસ પર્યાય સંબંધી જો રાગ હૈ, ઉસકે મોહ ભાવ હમને દેખે થે ના, જિસ પર્યાય મેં જાતા હૈ ઉસ ઉસ જાતિ કે ઉસકે હો જાતા હૈ, વો ભી ઉસસે જુદે હૈ. તો કે તે તિર્યંચોના શરીરમાં રહેનારને તિર્યંચોનું શરીર, તે તિર્યંચ શરીર તેમાં રહે છે, તે તિર્યંગસ્થ તેને આત્મા માને છે. તેવી રીતે દેવોમાં, દેવોના શરીરમાં રહેનાર આત્માને દેવ માને છે. રહેનાર કરો, રહેનાર નહીં, નહીં રહે નહીં, રહે છે. કોઈ ગલતિયા હોગી ને કિસી પુસ્તક મેં તો સુધાર લેના હું. નારકને આત્મા માને છે. કેવા નારકને? નારકીના શરીરમાં રહેનારને. આત્મા સ્વયં નરાદિરૂપ નથી. નરાદિ મીને નરક, નર એને મનુષ્ય, નર તિર્યંચ દેવયાન નારકી નથી, આત્મા ભિન્ન હૈ. કર્મોપાધિ વિના તે સ્વયં થતો નથી. એને આ કર્મ કા નિમિત્ત હૈ, ઉસકી ઉપાધિ હૈ. કેવી રીતે? તત્વતા એટલે પરમાર્થે તેવો નથી, પણ વ્યવહારે તે હોય તો ભલે હોય. એને વ્યવહારે કહેવાય, વ્યવહારે હોય કા અર્થ તે વ્યવહારે કહેવાય, ક્યોકિ ઉસકે વૈસે કર્મ કા ભી સંયોગ હૈ ઓર ભાવ ભી વૈસે ઉસ જાતિ કે ઉસકે હો રહે હૈ. ઉસકો કહેંગે ભી યે નારકી હૈ, યે મનુષ્ય હૈ, યે દેવ હૈ, એસા કહેંગે હમ. તો વ્યવહારે હોય ને વ્યવહારે કહેવાય, વ્યવહાર સે ઉસકો કહેંગે હમ. હા, જીવની મનુષ્યાદિ પર્યાયો કર્મોપાધિથી થયેલી છે. કર્મ કી ઉપાધિ હૈ, ઉસકા ઉદય ચલ રહા હૈ, ઓર વૈસે વૈસે જીવ કી યોગ્યતા ભી અપની હૈ. તો કર્મ પર આરોપ કરકે હમ કર્મ સે હી હો રહા હૈ, એસા કહેંગે હમ યહાં પર. તે કર્મોપાધિ નિવૃત્ત થતા એટલે મટતા, તે પર્યાય નિવૃત્ત થતી હોવાથી. ક્યાં કહેના ચાહતે? કર્મોપાધિ સે કબ નિવૃત્ત હો ગયે? કર્મ રહિત હોને પર. તો કોઈ ગતિ મનુષ્ય વગેરે નહીં હોગી. સિદ્ધ હોને કે પહેલે અર્યંત અવસ્થા મેં ભી તો વો મનુષ્ય ગતિ કા ઉદય થા, વહાં પર વો મનુષ્ય જીવ કહેલાતે. અર્યંત જો પર્યાય હૈ, વો મનુષ્ય ગતિ કે જીવો મેં હોતી હૈ, તો ઉનકો મનુષ્ય કહેંગે. ઉનકા જીવ સમાસ હમને દેખના હૈ તો હમ કહેંગે સંગી પંચેન્દ્રિય, ઓર ફિર ઉસકે ઓર ભેદ કરને તો વો મનુષ્ય હૈ, એસા હમ કહેંગે વહાં પર. ગતિ કી અપેક્ષા ઉનકે ભેદ કરને હૈ તો મનુષ્ય ગતિ કા જીવ કહેંગે હમ. તો કહેતે કે કર્મોપાધિ નિવૃત્ત થતા એટલે મટતા, તે પર્યાય નિવૃત્ત થતી હોવાથી વાસ્તવમાં તે પર્યાયો જીવને નથી, એમ અર્થ છે. એ તો વાસ્તવિક હોગી તો કાયમ રહેની ચાહીએ. હા, તો સિદ્ધો મેં તો એ ચાર મેં સે કુછ ભી નહીં રહેતા હૈ, શરીર હી નહીં હૈ, ઓર ના હી ઉસ જાતિ કે વહાં પરિણામ હોતે હૈ ઉનકે. ત્યારે પરમાર્થે આત્મા કેવો છે? એ મનુષ્ય રૂપ નહીં હૈ, દેવ રૂપ નહીં હૈ, તો હૈ કૈસા? હા, તે કહે છે તે અનંતાનંત ધી શક્તિ, અર્થાત અનંતાનંત જ્ઞાન અને શક્તિવાળો છે. તેઓ તે કેવી રીતે જાણી શકાય, અનુભવી શકાય? તે કહે છે કે તે સ્વસંવેદ્ય છે, સ્વયં હી અપને જ્ઞાન મેં જાના જાય, એસી ઉસી મેં उसमें ही शक्ति ऐसी है कि स्वयं ही अपने को जान सके। ऐसी शक्ति नहीं होती तो वो अपने को नहीं जान सकता था, वो केवल ही हमको जानते रहते हैं ना, कि ते स्व संवेद्य छे। निरुपाधिक रूपज वस्तु नो स्वभाव कहवाई छे। वस्तु का स्वभाव कैसा है, वो कर्म की उपाधि से रहित ऐसा उसका स्वभाव है। कर्मादिनो विनाश तथा अनंतानंत ज्ञान शक्ति रूपे परिणत आत्मा स्व संवेदन थी ज वेदी शकाय छे। संसार अवस्था मा ते कर्मोपाधि थी निर्मित एटले निर्मायलो होवाथी तेनाथी विपरीत परिणति नो अनुभव थाय छे। देखो अनुभव जो होता है, वेदन हो रहा है, वो अपने अपने पर्याय का होता है। अनंतानंत का वेदन कब होगा, जब अनंतानंत उसकी प्रकट होगी तब। अभी वर्तमान में स्वसंवेद है, जितने अंश में उसका एकाग्रता होगी उतना तो वेदन होगा उसको, उसको भी स्वसंवेदन कहेंगे। पर यहाँ अनंतानंद की बात ली है तो वो कब होगा, तो कहते कि तो उस रूप हाँ कर्मोपाधि से रहित होने पर। ते वो स्वसंवेद्य आत्मा भले हो पण ते केटलो काळ, सर्वदा तो नहीं होए। अच्छा वहां तो पूछा, यहाँ तो इतना ही नहीं, पण केटलो काळ એટલે केटलो काळ સુધી હશે, कितने काल तक होगा, ये शंका पूछ रहे हैं। स्वयं ही टीकाकार शंका उत्पन्न करेंगे और उसका उत्तर देंगे। तो कहते सर्व सब हमेशा तो नहीं होगा, कारण के पाछळथी तेना रूपनो नाश थाय छे। आवी शंकानो परिहार करता कहे, परिहार ने उसका रूल आउट करेंगे। तेनी एटले आत्मानी अचल स्थिति छे। अचल स्थिति बताए ना, वो अपने स्वरूप से कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता, कारण के अनंतानंत धी शक्तिना स्वभावना कारणे ते अचल स्थिति वालो छे। जे योग अने सांख्य मत वालाओए मुक्तिना विषय में आत्मानी तेनाथी प्रच्युतिनो एने मुक्ति की प्रच्युतिनो पतनो संभव मान्यो छे। क्या कहते, एक बार मोक्ष होने पर फिर वो तो दोबारा संसार में अवतार लेते हैं, समानते हो। तो कहते ये जब एक बार अनंतानंत धी शक्ति उत्पन्न हुई है तो अभी वो अचल स्थिति है, वो मोक्ष पर्याय में से फिर भ्रष्ट नहीं होगा, वो कायम वैसा का वैसा रहेगा। ये पर्याय की बात है ना, स्वभाव से तो कायम है ही है। तो कहते योग और सांख्य मत वालाओए मुक्ति ना विषय में आत्मानी तेनाथी यानी मुक्ति थी प्रच्युति नो संभव माने छे। प्रच्युति यानी च्युति, यानी वो नष्ट हो जाना, मोक्ष पर्याय हट जाना, उससे पतन हो जाना, ऐसे उनकी मान्यता है। हाँ विचित तेमना संबंधी खंडन रूपे, यानी उसको हम यहाँ आचार्य ने उसका खंडन किया, इस मान्यता का खंडन किया, निषेध किया। प्रमेय कमल मार्तंड ये सब न्याय के ग्रंथों के नाम है। अने न्याय कुमुद चंद्रमा मोक्ष विचार प्रसंगे विस्तार थी कहवामा आयु छे। यानी वो मोक्ष संबंधी वहाँ जो कुछ विशेष कथन है उसमें सभी बातें बताई गई है। क्योंकि कोई ऐसे मानने वाले हैं मोक्ष है एक बार प्राप्त हुआ फिर वहां से च्युत होकर संसार में आता है, तो उस मान्यता का वहां निषेध किया, इसलिए उनके ग्रंथों के नाम बताए। भावार्थ नर नारकादि जे पर्यायों ने जीव धारण करे छे ते पर्यायो रूप अज्ञानी पोताने माने छे। मैं मनुष्य हूँ, कब से जन्म से अभी मैं मर जाऊंगा, बाद में क्या होगा तो उसके लिए वो अलग अलग कुछ न कुछ दलील करता है, ऐसा होगा वैसा होगा वैसा वैसा, उसमें साइंटिस्ट में चल रही ना बातें, मनुष्य की उत्पत्ति कैसी हुई होगी क्या होगी, तो उत्क्रांति मानते छोटे छोटे जीवन से वो बढ़ते 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 मनुष्य हो गया। डार्विन की थ्योरी, पहले मंकी था यानी तीन इंच में से मनुष्य होगा, तो अनादि से मनुष्य नहीं थी पर्याय, खाली तीन इंच थे सूक्ष्म, ये उनकी थ्योरी है। देखो यहाँ कोई थ्योरीज नहीं, ये फैक्ट्स है। साइंटिस्ट को जो कोई चीज़ें नहीं उसका सॉल्यूशन मिलता है तो अलग अलग थियोरीज रखते हैं और फिर उस थियोरीज को प्रूव करने की कोशिश करें। यहाँ तो सर्वज्ञ भगवान ने जो कुछ बताया वो फैक्ट्स है, कोई थियोरीज नहीं है कि पॉसिबिलिटीज नहीं, थियोरीज यानी पॉसिबिलिटीज नहीं है, वो तो फैक्ट है, वस्तु स्थिति है, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जानकर बताई। चारों ही गतियां अनादि से ही चली आ रही है, ऐसा नहीं कि कोई गति में जीव ही नहीं था और बाद में उसकी उत्क्रांति हुई और उत्पन्न हुए, मनुष्य थे ही नहीं बाद में उत्पन्न, ऐसे कभी होगा ही नहीं। देखो यहाँ क्या कहते भावार्थ में, नर नारकादि जे पर्यायों ने, नर नारक है ने मनुष्य तीर्यंच देव नारकी, इसको कहेंगे नर नारकादि जे पर्यायों ने जीव धारण करे चे, जिस भव में जिस गति में वो जाता है ते पर्यायो रूप अज्ञानी पोता ने माने छे। जो तीर्यंच में जन्म लेता है वो अज्ञानी है, तीर्यंच है तो अपने को उस पर्याय रूप मानता है, कुत्ता अपने को कुत्ता मानता है, गधा अपने को गधा मानता है, मनुष्य अपने को मनुष्य मानता है, तो मनुष्य में और गधे में क्या अंतर हुआ? अरे दोनों कैसे गधे हुआ ये मनुष्य? गलत मान्यता। वास्तव में जीव ते पर्याय रूप नहीं, उसने बस जिस शरीर को अभी धारण किया है कुछ काल के लिए तो उस रूप में हो गया ऐसा मानता है। कौन ते, तेने आत्मा स्वयं जीव स्वानुभव गम्य यानी अपने ही अनुभव के द्वारा जाना जा सके ऐसा, गम्य का अर्थ होता है गम्य होना यानी जानने में आना, अपने ही स्वानुभव से स्वयं उसका वेदन करके जान सकते हैं ऐसा है, और कैसे तो शाश्वत कायम रहने वाला, ये मनुष्यादि नर नारकादि पर्याय तो कितनी हो तो शाश्वत तो नहीं रहेगी। आप कहेंगे बार बार मनुष्य में जन्म ले सकता है, पर तो वो मनुष्य एक भव तो नष्ट होकर दूसरे भव में जाएगा है ना, तो पढ़ा हुआ सब साथ में आएगा ना, कि फिर दोबारा ABCD करना पड़ेगा। ये शाश्वत अने अनंतानंत ज्ञान वीर्य मय है, यानी उसके स्वभाव का स्वभाव भाव की बात है, और मुक्त अवस्था में, यहाँ मोक्ष की बात की अवस्था की बात की, मुक्त अवस्था में तेनी स्थिति अचल छे, यानी एक बार मुक्त अवस्था प्राप्त हुई अभी वो पर्याय हमेशा मुक्त 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 चलेगी, यानी हर समय नहीं भले हो परंतु वो तो कायम, वो उसको ध्रुव भी कहेंगे किसी अपेक्षा से, वो आता है ना ध्रुवम अचलम अनुभवम सिद्ध गति पामेल जीव ने, यानी जो उसको ध्रुव गति कह सिद्ध गति को, क्योंकि एक एक समय की पर्याय ना, हाँ फिर भी अभी प्रवाह अपेक्षा वही की वही वैसी की वैसी चलेगी तो उसको ध्रुव कहने में आता है, इसलिए यहाँ उसकी स्थिति अचल बताई। त्या थी एटले मुक्ति थी तेनु कदी पण पतन थतु नथी, अर्थात जीव मुक्त थया पछी कदी फरी थी संसार मां आवतो नथी। योग ने सांख्य मत वाला ने मान्यता तेना थी विपरीत छे, वो कहते ने वो तो जहाँ जहाँ यहाँ पाप बढ़ता है बहुत जीव दुखी होते हैं तो फिर दोबारा अवतार लेते हैं स्वयं दुखी होने के लिए। विशेष विशेष ने भी इस पर, और ये तो हमने टीका पढ़ी भावार्थ भी पढ़ा। बहिरात्मा नरनारकादि पर्यायों ने पोतानी साची अवस्था माने छे, आत्मानु वास्तविक स्वरूप तेना थी भिन्न। देखो जीव द्रव्य भिन्न है, ये पुद्गल भिन्न है, उसके वो जो कुछ रागादि है भले वो जीव की अपनी पर्याय है परंतु वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। शरीर की रचना हुई है, देह में वो विद्यमान है, वहां पर देह से रहित है, देह में रहते हुए भी देह से रहित है, वो रहते है वो भी उपचार से कथन आता है क्योंकि अभी संयोग है उस भव जितने कुछ उसकी हम कहेंगे उस मर्यादा के लिए आयु बांधकर आया हम कहीं आयु पर उपचार करेंगे, वो जीव की योग्यता जितने काल है उसकी बात करेंगे यहाँ पर। तो आत्मानु वास्तविक स्वरूप तेनाती भिन्न यानी उन पर्यायों से भिन्न है, कर्मोपाधि रहित शुद्ध चैतन्यमय टंकोत्कीर्ण एक ज्ञाता दृष्टा छे। देखो कर्मोपाधि रहित कर्म के उदय में होने वाले जो जो बातें हैं वो तो कर्म के खाते में डालेंगे हम, जीव तो उससे भी नहीं। और कैसा है तो शुद्ध है, वो कभी अन्य रूप हुआ ही नहीं, ये उसकी शुद्धता है, चैतन्यमय है, टंकोत्कीर्ण ने एक रूप कायम, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये जो अवस्था में जो उत्पाद व्यय होता है वो बात नहीं है, कायम ही रहने वाला स्वभाव वो टंकोत्कीर्ण, इसलिए एक कह दिया। ज्ञाता दृष्टा छे, अभेद्य छे, एक अखंड है ना तो अभेद्य छे, उसको भेदा नहीं जा सकता। अनंत ज्ञान तथा अनंत वीर्य थी युक्त छे, अने अचल स्थिति रूप छे। आओ भेद ज्ञान, भेद ज्ञान कोई विवेक भी कहेंगे, विवेक ज्ञान तेने होतु नथी, किसकी बात चल रही है, बहिरात्मा की। तेथी ते संसार ना परपदार्थों मा तथा मनुष्यादि पर्यायों मा आत्मबुद्धि करे छे, तेने आत्मा माने छे। यह मैं हूँ ऐसा मानता है। अब उस मैं जो माना हुआ मैं है, उसमें कोई तकलीफ हो जाए, उसमें कोई बिगाड़ हो जाए तो अपने को दुखी, क्योंकि मैं ही अभी मर जाऊंगा, मैं बीमार हो गया, मैं ऐसे ऐसी कल्पना करता रहता। जीव जे जे गति मा जाए छे, ते ते गति ने अनुरूप जुदो जुदो स्वांग धारण करे छे। ये स्वांग ये तो है ना, उसके अलग अलग देह धारण करता है, जुदा जुदा स्वांग धारण करता है। स्वांग में तो ये भी है ना, उस जाति के भाव भी होगी उसके स्वांग के अनुकूल। जहाँ नाटक में कोई स्वांग लेता है, रोल करता है, हाँ तो वैसे उसके तो एक्शन सब वैसे करेगा। आ स्वांग अचेतन छे, जड़ छे, क्षणिक छे। ते वेश ने धारण करनार जीव तेनाथी भिन्न। देखो कोई, मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है, वो जैन तत्व परिचय में शायद, वो तो राजा हरिश्चंद्र का रोल कर रहा था, कोई नाटक चल रहा था और उसकी तो बहुत दर्दनाक कहानी है ना सारा, नहीं मालूम। राजा था, बहुत सत्यवान था, तो वो तो चांडाल का काम करना पड़ा ना उसका, वही तो है उसकी स्टोरी, स्मशान में वो चांडाल का काम करता था। तो वो देख देख कर सब श्रोता रोने लगे। तो एक तो स्त्री ऐसे देखती थी, तो उसके बाजू वाली को रहा नहीं गया, तो उसके कैसी दुष्ट है तू, उस पर इतना गुजर रहे, तेरी आंख में पानी भी नहीं है, तो बहुत दुष्ट है। दुष्ट कहा कि वो तो मेरा पति है। वो तो रोल कर रहा है, मुझे मालूम है वो कौन है। वो स्वांग है उसका, हम तो स्वांग को ही सच मानकर, ये तो टीवी के स्वांग देख के भी यहाँ रोने वाले है होते कि नहीं। हाँ देखते, ये स्वांग अचेतन है, जड़ है, क्षणिक है। ते वेश ने धारण करना जीव, देखो बाह्य वेश को वो अपना स्वरूप नहीं मान रहा है, जैसे उलन कपड़े पहने अपने को उलन नहीं मान रहा, काले वस्त्र पहने से मैं काला हो गया नहीं मानता है। हाँ, परंतु ये देह जो वेश है वो धारण करने पर वो अपने को उस रूप मानने लगा। ते वेश ने धारण करना जीव तेनाती भिन्न शाश्वत ज्ञान स्वरूप चेतन द्रव्य। वो तो कभी अपने स्वरूप से तो च्युत हुआ ही नहीं अनादि से, अलग अलग स्वांग इतने बदले उसने, पर घर फिरत बहुत दिन बीते। हाँ, परंतु उसके वो सब नामों को ही अपना स्वरूप मान लिया है कि नहीं, तो वो तो स्वयं शाश्वत है, ज्ञान स्वरूप चेतन द्रव्य छे। अज्ञानी ने पोताना वास्तविक स्वरूप नु भान नथी, तेथी ते बाह्य वेश ने ज जीव मानी ते प्रमाणे वर्ताव करे छे। एने उस रूपी, मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, इन्हें उतना मात्र अपना अस्तित्व मानकर बैठा, वर्ताव करे छे, उसका आचरण भी उतना ही होता है। अमूर्तिक प्रदेशों नो पुंज, रुमय कहाँ लिखा है, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों नो धारक, અનાદિ નિધન વસ્તુ પોતે છે. હા વંદાબેન, યાદ હે મિલીભાઈ? અરે બહુ ફેમસ વાક્ય હે. મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશન, દેખો દેખો પહેરેંગે. અમૂર્તિક પ્રદેશો નો પુંજ આત્મા, જીવ કી બાત ચાલ રહી, સ્વયં કોણ હે? અમૂર્તિક પ્રદેશો કા પુંજ, પુંજ વો તો એક અખંડ વસ્તુ હૈ. હમ ઉસકા ભેદ કરકે કથન યાની સમજને કે લિયે અસંખ્યાત પ્રદેશી એસા કહેંગે, પરંતુ ઉસકા એક અખંડ પુંજ હૈ વો. તો કે તે અમૂર્તિક પ્રદેશો નો પુંજ, પ્રસિદ્ધ જ્ઞાનાદિ ગુણો નો ધારક, જ્ઞાનાદિ મેં અનંત ગુણો કા ધારક, અનાદિ નિધન વસ્તુ પોતે આત્મા છે ને પોતે છે. અનાદિ નિધન એને અનાદિ અનિધન, અનાદિ અનંત રહેને વાલી વસ્તુ દ્રવ્ય પોતે છે, એને સ્વયં કૈસા હૈ તો ઇસ તરહ સે અમૂર્તિક પ્રદેશો કા પુંજ. તથા મૂર્તિક પુદ્ગલ દ્રવ્યો નો પિંડ વહા પ્રદેશો કા પુંજ કહા, એક અખંડ એક આત્મા હૈ, મેં સ્વયં એક હું. ઓર યહાં પુદ્ગલ કૈસે તો મૂર્તિક હૈ, મેં અમૂર્તિક થા યે પુદ્ગલ મૂર્તિક હૈ. ઓર પુદ્ગલ દ્રવ્યો નો પિંડ યાની અનંતાનંત પુદ્ગલ દ્રવ્ય ને પરમાણુઓ કા એક પિંડ, પિંડ બનાયા ભી જૈસે મિટ્ટી કા જો ધૂળ કણ અલગ હૈ ઉસકા પિંડ બનાયા, વૈસે તો અનંતાનંત પુદ્ગલ દ્રવ્ય મિલકર એક પિંડ રૂપ રચના હુઈ હૈ. ઓર કૈસા હૈ? પ્રસિદ્ધ જ્ઞાનાદિ રહિત, હમ અનંત જ્ઞાનાદિ અનંત ગુણો કા ધારક હમ હૈ, ઓર યે જ્ઞાનાદિ સે રહિત હૈ. ઓર કૈસા હૈ? નવીન જેનો સંયોગ થયો છે. હા, અભી એ ઇસ ભાવ કે લિયે ઉસકા સંયોગ હુઆ હૈ, નવીન હી જિસકા સંયોગ હુઆ હૈ. એવા શરીરાદિ પુદ્ગલ કે જે પોતાનાથી પર છે, એ બંનેના સંયોગરૂપ નાના પ્રકારના મનુષ્ય તિર્યંચાદિ પર્યાયો હોય છે. નાના પ્રકારના ભી ઉસમે ભી તિર્યંચ કિતને પ્રકાર કે હોગે, પાંચ તો જાતિ હોતી હૈ, એકેન્દ્રિય સે પંચેન્દ્રિય તક, ઉસમે ભી હરેક મેં કિતની કિતની વેરાયટી હૈ ના, બહોત વેરાયટી વેરાયટી કર કર કે હમ આ ગઈ યહાં તક હૈ.
દેખો યહાં પર એક એક શબ્દ કો દેખેંગે.
હાં, બહોત
એક એક શબ્દ કો દેખેંગે. યહાં જો કહે રહે અમૂર્તિક પ્રદેશો કા પુંજ, એક સ્વક્ષેત્ર હુઆ, પ્રસિદ્ધ જ્ઞાનાદિ ગુણો કા ધારક, એ સ્વભાવ હુઆ,
સ્વભાવ
અનાદિ નિધન એવ સ્વકાલ હુઆ, વસ્તુ યાની સ્વદ્રવ્ય, ઇસકે સાથ કમ્પેરિઝન કે શરીર કી, તથા મૂર્તિ પુદ્ગલ દ્રવ્ય નો પિંડ વો હો ગયા ઉસકા ક્ષેત્ર, પ્રસિદ્ધ જ્ઞાનાદિ રહિત યાની વો ઉસકા
અચેતન હુઆ ના ભાવ,
ઓર નવીન જેનો યે અનાદિ નિધન ઉસકે અગેન્સ્ટ ક્યા હૈ? અભી અભી જિસકા સંયોગ હુઆ એસા યે શરીર, વો કૈસે શરીર સે પુદ્ગલ યે એસા દોનો મેં ઇતને ડિફરન્સ હોતે હુએ ભી.
આવાજ આપકી કમ આ રહી
હૈ. હા, આવાજ
દોનોં મેં ઇતના ડિફરન્સ હોતે હુએ ભી યહ જીવ શરીર કો અપના માનતા હૈ, જે શરીર આદે જે પોતાનાથી પર છે, એ બંનેના સંયોગ રૂપ નાના પ્રકારના મનુષ્યાદી પર્યાય હોય છે, તે પર્યાયોમાં મૂળ જીવ અંબુદ્ધિ ધારે છે. યાને ઉસ શરીર કૈસા ભી હોવે, કાલા કલુટા કૈસા જાડા પતલા જો ભી હોવે, વો મેરા હૈ. અભી દેખો ના, હમ તો યહાં દેખતે ગોરે ગોરે જો કોઈ હૈ, વો અપને શરીર કે પ્રતિ મમત્વ રખતે કે નહીં? ઓર જો કાલે હમારે મદ્રાસ કે હૈ, વો અપને શરીર કે પ્રતિ અરે કૈસા શરીર એસા બોલતે હૈ? હા, એસે હી સબ મેં લેના, કોઈ બહોત મોટા આદમી હોગા ઓર ઉસકો બોલેંગે કે ભાઈ તું શરીર કે પ્રતિ મમત્વ ક્યું રખતા હૈ? ઓર એકદમ દુબલી દુબલી વો સુબહ આતી હૈ ના, આપ લોગ કોઈ નહીં જાને દે, ઉસકે જૈસા કોઈ હોવે તો વો ક્યા અપને દુબલે શરીર કે પ્રતિ એકત્વ નહીં રખેગા? આપકો સબકો માલુમ હૈ એસે હમારે રતનચંદજી બારી એકદમ એસે 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 બારીક બારીક, તો ઉનકે ભી આપને શરીર કે પ્રતિ મમત્વ હોગા માલુમ નહીં હૈ, લેકિન હોના ચાહીએ. યે સબ ક્યા બતાતે હૈ કે મનુષ્ય તિર્યંચાદિ પર્યાય, યાની યે પર્યાય મેં મનુષ્ય હુઆ, ઓર તિર્યંચો મેં તો વેરાયટી ઇતની કે પૂછો મત, એક ઇન્દ્રિય દો ઇન્દ્રિય તિન જો ભી હૈ, તો તે પર્યાયમાં આ મૂળ જીવ અહમ બુદ્ધિ ધારી રહ્યો છે. ये तो टोडरमल जी की तो ऐसी बात है, एक एक बातों पर लंबा लंबा बोल सके, इतना उसके अंदर गूढ़ अर्थ भरा हुआ है। स्व परनो भेद करी शक्तो नथी,
नवीन संयोग हुआ है। हाँ अभी हाँ। अभी ये एक बहुपुरता संयोग हुआ है उसका, वो भी उसका वियोग निश्चित है। ये समझना, जहाँ जहाँ संयोग है, संयोग दो भिन्नता को बता, संयोग शब्द ही दो भिन्न चीजों को बता, संयोग अभी उसके इकट्ठा आ गए तो उसका वियोग निश्चित है, कुछ मर्यादा के लिए उसका संयोग हुआ है।
हाँ, आप पढ़िए।
तो कहते ए पोतानाथी पर छे, ए बनने ना संयोग रूप नाना प्रकार ना मनुष्य तीर्यंचादि पर्याय होई छे, ते पर्यायो मा आ मूल जीव अहम बुद्धि धारी रहो छे, स्वपर्णो भेद करी शकतो नथी। जे पर्याय पाम्यो होई तेने ज पोतापने माने छे। ये पर्याय नहीं, वो एक समय वाली पर्याय की नहीं बात, जिस भव में गया है, जिस मनुष्य तीर्यंच आदि जो पर्याय प्राप्त हुई है, उस रूप ही अपने को मानता है पोता, यानी उसको अब पोतापने माने छे। तथा ये पर्याय में पण जे ज्ञानादि गुणों छे ते तो पोताना गुण छे, अने रागादि छे ते पोताने कर्म निमित्त थी औपाधिक भाव छे, वरी वर्णादि छे ते पोताना गुणो नथी पण शरीरादि पुद्गलना गुणों छे। मैंने उस दिन वो स्लेट पर बताया था आपको, ये सब मैं हूँ, अज्ञानी क्या मानता है ये मैं हूँ। हाँ, एक बाजू जीव है, एक बाजू शरीर है। जीव में ज्ञान आदि, यहाँ पर भी लिया ना, ज्ञान आदि गुणों पोताना गुण छे, कायम रहने वाले हैं। रागादिक छे यानी जो विभाव भाव है, तो कर्म निमित्त थी औपाधिक भाव छे, क्षणिक भाव है, विभाव भाव है, अपना असली स्वभाव नहीं है। ये तो हम जीव के कहेंगे अभी तक, पर है तो कर्मोपाधि से हुए भाव। जीव के अपने कौन से, ज्ञान आदि गुण, राग आदि वो कर्म के उपाधि से हुए। अब शरीर आदि में वो तो वर्ण आदि सब वो शरीर के हो गए, तो है ना, वर्ण आदि छे ते पोताना गुणों नथी पण शरीर आदि पुद्गलना गुणों छे। अब शरीर आदि में पण वर्णादिनु वा परमाणुनु पलटाऊ नाना प्रकार रूप थया करे छे। क्या कहते हैं, शरीर मिला तो पूरे एक भाव के लिए तो उसकी अवस्था वैसी की वैसी रहेगी कि नहीं, नहीं तो वो अनेक रूप होती रहती है। पहले बच्चा छोटा था, फिर वो कितना बड़ा हो गया, अभी इतना लंबा चौड़ा हो गया, 6 फुट का है ना, तो बहुत नाना रूप हो गया। अब बाद में क्या हुआ, युवान था फिर वृद्ध हो गया, तो स्किन कैसी हो गई, बाल काले थे सफ़ेद हुए, फिर वो भी नहीं रहे, और क्या क्या हुए, हाथ पैर कांपने लगे, बहुत सारी अवस्थाएं हुई, यह है ना। शरीर आदि में पण वर्णादिनु, वर्णादि का भी पलटना हो रहा है, वहाँ परमाणुनु पलटाऊ नाना प्रकार रूप थया करे छे। बहुत सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो हर समय शरीर के अनंत परमाणु आ रहे हैं, पहले में से कितने अनंत जा रहे हैं, अनंत की धूल आती जाती रहती है, और वो ढाका का ढाँचा वैसा है कि नहीं, वो देखता है रोज मिरर में देखकर नक्की करता है, मैं वैसा ही हूँ। तो कहते उसमें बहुत पलटना होता है कि नाना प्रकार रूप थया करे छे, ए सर्व पुद्गलनी अवस्थाओ छे। उसको क्या मानता है, परंतु ते सर्व ने आ जीव पोतानु स्वरूप जाने छे। नक्की तो वो करता है ना बारंबार, घर के सारे मिरर निकाल दो, कैसा होगा उसको। मर गया। तो ये आ सर्व ने पोतानु स्वरूप जाने छे, और ये जान जान कर या तो उसको देख देख कर खुशी होता है। वो तो स्वामी जी पहले बताते, ये तो मर करके जैसे करते आईने में देख देख कर, ऐसा ऐसा कंघी घुमाता है, क्या क्या करता है। तो कहते सर्व पुद्गलनी अवस्थाओ छे, परंतु ते सर्व ने आ जीव पोतानु स्वरूप जाने छे, तेने स्वभाव परभावनो विवेक थई शकतो नथी। उसका उसके विवेक नहीं, उसका भेद नहीं जानता, विवेक का ही अर्थ भेद ज्ञान। अब हम आते हैं अपने पुस्तक आत्म भावना पर, वैसे 2 ही मिनट रह गए अभी। आत्म भावना की 36 नंबर, जहाँ 8 और 9 नंबर का श्लोक है ना, वो निकालना। ये हेडिंग दिया है, देह मां आत्म बुद्धि ने लीधे अज्ञानी नी भूल अने आत्मानु खरू स्वरूप। आत्मज्ञान थी विमुख होवाती, विमुख यानी परांगमुख, उससे आत्मज्ञान नहीं हुआ है, उससे दूर है, अने इंद्रिय ज्ञान द्वारा ज जानतो होवाती अज्ञानी जीव देहती भिन्न पोताना आत्मा ने जानतो नथी। पोताने आत्मा जानने का तरीका क्या था? इंद्रिय ज्ञान से तो नहीं जाना जा सकता है, वो अतीन्द्रिय आत्मा स्वयं अतीन्द्रिय पदार्थ है, वो स्वयं अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से जाना जा सकता है। शरीर ने आत्मा माने छे, तेमज बीजा मा पण ते रीते शरीर ने आत्मा माने छे, अने आत्मा ने ज मनुष्यादि रूप माने छे, पण आत्मा नु खरु स्वरूप तेवु नथी, ते वात हवे 8मी तथा 9मी गाथा मा कहे छे। नरदेहस्थम आत्मानम अविद्वान मन्यते नरम, तिर्यंचम तिर्यगंगस्थम सुरांगस्थम सुरम तथा, नारकम नारकांगस्थम न स्वयं तत्वतस्तथा, अनंतानंतधी शक्ति स्वसंवेद्योचल स्थिति। यहाँ बराबर स्थिति है, यही रुकेंगे हम, बाकी बात कल। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तकन सदा देत हो लो। नलिन भाई,
नमो अरिहंता, नमो सिद्धान, नमो आयल्यान, नमो वर्षायान, नमो लोय सत्साम।